पहला राजा अध्याय 17। आइए अब हम पहला राजा अध्याय 17 खोले। पहला राजा अध्याय 17 हमें एक बड़े रोचक व्यक्ति का परिचय देता है जिसका नाम तिशबी एलिया था। एलिया गिलाद क्षेत्र से आया था। गिलाद को आज यर्दन पार कहते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि तिशबी का अर्थ है गैर इसराइली, परंतु ये एक अनुमान है। एलिया की जीवन यात्रा बड़ी रोचक थी। वो धर्म त्यागी उत्तरी राज्य में आया था। उसकी भविष्यवाणी के आरंभ में आहाब अपनी दुष्ट पत्नी इजेबेल के साथ राज्य कर रहा था। उन्होंने यहोवा की उपासना को लगभग समाप्त कर त्याग दिया था। उन्होंने इसराइल में बाल देवता की उपासना आरंभ कर दी थी और परमेश्वर की वेदियां ढा दी थी। उन्होंने परमेश्वर के नबियों को मार डाला और उत्तरी राज्य से परमेश्वर की उपासना को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अंधकार के समय एलिया आकर परमेश्वर का संदेश और चेतावनी लोगों को देता है, इसलिए वो एक रोचक चरित्र है। मलाकी ने भविष्यवाणी की है कि मसीह के आने से पहले एलिया आएगा जो पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। परमेश्वर फिर से इसराइल देश में एलिया को भेजेगा कि इसराइल देश में धर्म जागृति आए। ये यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले होगा। लूका अध्याय 1 में लिखा है कि जब जकरिया याजक मंदिर में था कि याजक का काम करें, वेदी की दहनी ओर जिब्राइल स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उससे कहा कि तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। मेरे विचार में यहां जो मुख्य बात है वो एलिया की आत्मा और उसका सामर्थ। हम यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता सेवा पूरी कर रहा था, तब इसराइल के अगुओं ने उसके पास आकर पूछा, तुम्हें किसने ये सब करने का अधिकार दिया? क्या तू एलिया है? उसने कहा, नहीं। तो क्या तू भविष्यद् वक्ता है? नहीं। फिर तू है कौन? उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना ने एलिया होने से इनकार किया। तो भी यूहन्ना की मृत्यु के बाद जब यीशु यूहन्ना के बारे में बात कर रहा था, उसने कहा, मत्ती 11 अध्याय 11 पद, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यद् वक्ताओं में सबसे बड़ा क्यों कह रहा था? उसने कहा, फिर वचन में क्यों लिखा है, एलिया को पहले आना अवश्य है? यीशु ने कहा, एलिया पहले आएगा। दूसरे शब्दों में मलाकी की भविष्यवाणी पूरी होगी। यीशु के आने से पहले एलिया आएगा। परंतु उसने कहा, यदि तुम स्वीकार कर सको तो ये एलिया है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदर्भ में कह रहा था। अब हमें पता है कि मसीह के दो आगमन हैं। पहले आगमन में उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए परमेश्वर की योजना अनुसार बलिदान किया। दूसरे आगमन में वो पृथ्वी पर राज करेगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। इसी तरह एलिया की भविष्यवाणी के भी दो भाग हैं, क्योंकि वो मसीह के आगे चलने वाला था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा और शक्ति में मसीह की पहले आगमन से पहले आने वाला बना, परंतु एलिया मसीह की दूसरी आगमन से पहले फिर आएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा और शक्ति में था। एलिया रूपांतर के पहाड़ पर दिखाई दिया था। प्रभु यीशु पत्रस, याकूब और यूहन्ना के साथ ऊंचे पहाड़ पर गया। उनके सामने उसका रूप बदल गया और एलिया मसीह के साथ दिखाई दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में पद 3 में लिखा है, मैं अपने दो गवाहों को भेजूंगा, अर्थात इसराइल देश में दो गवाह, जिनमें से एक निश्चय ही एलिया होगा, और इस तरह मलाकी की भविष्यवाणी पूरी होगी। इसलिए एलिया एक रुचिकर चरित्र है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में था, परंतु रूपांतरण के पर्वत पर भी दिखाई दिया और एक बार फिर यीशु के पुनः आगमन से पहले दिखाई देगा। इस भविष्यवाणी के कारण कि एलिया पहले आएगा, यहूदी हर फसा के पर्व पर वे एक कुर्सी खाली रखते हैं और दरवाजा खुला रहता है कि उसका स्वागत है। इसलिए उनके खाने की मेज पर एक कुर्सी खाली रखी रहती है। ये उनके मसीह के आगमन की प्रतीक्षा का प्रतीक है, परंतु वे वास्तव एलिया की बाट जो रहे हैं और उसके आने से पहले एलिया के लिए कुर्सी लगाते हैं। एलिया रुचिकर चरित्र है और अब हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वो इसराइल के अंधकार पूर्ण समय में वहां आया था, जब उनकी आत्मिक स्थिति गिरती जा रही थी। वो बड़े नाटकीय तरीके से आता है और घोषणा करता है और फिर विलोप हो जाता है। वो दुष्ट राजा अहाब के पास गया और उससे कहा, अध्याय 17 पद 1, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। वो 3.5 वर्ष के लिए विलोप हो गया और 3.5 वर्ष तक ना तो मेह बरसा और ना ही ओस पड़ी, यहां तक कि भूमि बिल्कुल सूखी और प्यासी हो गई। पहले वहां से चलकर वो गिलाद के पीछे करीत नाम नाले में, जहां से वो आया था, जा छिपा। परमेश्वर ने उससे कहा, उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैं तुझे भोजन दूंगा, और परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि उसके लिए रोज भोजन लाया करे। सांझ और सवेरे वे उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे। वो करीत नाम नाले के पास रहा। सुबह और सांझ कौवे उसके लिए भोजन लाया करते थे, और जब तक वर्षा ना होने के कारण नाला सूख न गया, वो वहीं रहा। फिर परमेश्वर ने उसे सिदोन के सारपत नगर में जाकर रहने को कहा, जो आज लेबनान का क्षेत्र में है। सिदोन एको से करीब 10 मील उत्तर में है। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी। परमेश्वर ने कहा, वो तेरी देखभाल करेगी। अध्याय 17 पद 10, सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। बहुत प्राचीन संस्कृति में स्त्रियां आग जलाने के लिए लकड़ियां बीनने बाहर जाया करती थी। अब भी अनेक स्थानों में स्त्रियां लकड़ियां बीनते देखी जा सकती हैं। पूरे इसराइल में आज भी काफी स्थानों में प्राचीन सभ्यता प्रचलित है। वहां स्त्रियां लकड़ियां बीनती हैं और खुले स्थान में आग जलाकर भोजन पकाती हैं। इसलिए वो विधवा वहां लकड़ियां बीन रही थी और उसने उससे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को पानी ले आ। और जब वो उसके लिए पानी लेने जा रही थी, उसने कहा, क्या अपने साथ एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आएगी? उसने अपने मन की बात कहा, मुझे क्षमा करे महोदय, सच में मेरे पास कोई रोटी नहीं है। मैं अभी थोड़ी लकड़ियां जमा कर रही हूं कि आग जलाकर जो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। विधवा ने जाकर एलिया के लिए रोटी बनाई और पाया कि बर्तन में मैदा अभी भी बाकी था, तेल भी कुप्पी में बचा था, और वो एलिया को खिलाती रही। सूखे के इस पूरे समय ना तो मैदा घटा और ना तेल, वहां सदा रोटी बनाने के लिए मैदा बचा रहता था। ये वास्तव में एक आश्चर्य कर्म है और इसमें से कुछ भी घटने की गुंजाइश नहीं है। परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी आवश्यकता पूरी की, परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि नबी ने कहा, पहले मेरे लिए बना फिर अपने लिए बनाना। यहां आत्मिक रीति पर एक बात है। जहां तक हमारे जीवन का प्रथम फल परमेश्वर को देने की बात है, यीशु ने कहा, मती 6:33, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब यदि मैं अपनी प्राथमिकता को बदल दूं और दूसरी चीजों को ढूंढना आरंभ कर दूं, तो मेरा जीवन दूसरी चीजों को ढूंढने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि परमेश्वर के लिए समय ही नहीं रहेगा। परंतु यदि मैं पहले परमेश्वर से संबंध बनाऊं, तो मेरी दूसरी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक जिसमें मैं परमेश्वर से संबंध रखता हूं और दूसरा जिसमें मैं संसार से संबंध रखता हूं। यदि परमेश्वर के साथ मेरे संबंध जैसे होने चाहिए वैसा है, तो मेरे जीवन का संसारिक पहलू भी ठीक हो जाएगा। मेरे संबंध अपने चारों ओर के लोगों के साथ ठीक ही रहेगा और मेरा जीवन भी संतुलित रहेगा। यदि मेरा संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है, अर्थात मेरे संबंध परमेश्वर के साथ जैसे होने चाहिए वैसा नहीं है, तो मेरा सांसारिक जीवन भी अव्यवस्थित रहेगा। मैं अपने जीवन को संतुलित करने के लिए संघर्ष करता रहूंगा और मेरा जीवन इसी संघर्ष में व्यतीत हो जाएगा। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे सब संबंध बिगड़ जाएंगे। यदि मैं अपना समय अपने जीवन को संतुलित करने में लगा दूं, तो मैं केवल लक्षणों का इलाज कर रहा हूं। ये ऐसा है जैसा कि दिमाग के कैंसर का दर्द की गोली से इलाज करना कि दर्द से राहत मिले। ऐसा करके हम लक्षण का इलाज करते हैं, दर्द के कारण की गहराई में नहीं जाते। जो डॉक्टर लक्षण का इलाज करता है वो नीम हाकिम है, उससे दूर रहे। आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए जो लक्षण के मूल को खोज निकाले। आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं? आपके सिर में क्यों दर्द की असहनीय दशा है? आपको कोई अच्छी दवा चाहिए। अधिकतर लोग केवल लक्षण का इलाज करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि लोग अपने सांसारिक संबंधों को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं, परंतु कुछ नहीं होता है। इसका एक बहुत आसान तरीका है। अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करो, बस सब ठीक हो जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। एलिया ने कहा, पहले मुझे रोटी बना दे। यदि उसने पहले अपने लिए और अपने बेटे के लिए रोटी बनाई होती तो क्या होता? बर्तन का मैदा और कुप्पी का तेल खत्म हो जाता और वे मर जाते। पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रभु को प्रथम स्थान दो, अपनी प्राथमिकताओं को सुधारो, फिर परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। परमेश्वर जीवन की हरेक जरूरतों का ध्यान रखेगा। इसलिए मेरा सबसे प्रमुख संबंध जो इस संसार में होना चाहिए वो परमेश्वर से संबंध है, और उससे बढ़कर कोई और नहीं। इसके अतिरिक्त यदि कोई और संबंध है तो वो भी परमेश्वर के संबंध से ऊपर ना हो, क्योंकि यदि ये संबंध ठीक है तो बाकी सब संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे। यदि परमेश्वर से मेरे संबंध सदे हुए नहीं है तो मैं किसी भी तरह अपने जीवन को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं सदा इसके लिए उलझा रहूंगा। अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने का कोई और रास्ता नहीं है। जब तक कि हमारा जीवन परमेश्वर में केंद्रित न हो, और यही मुख्य आधार है जिस पर आपका जीवन चलता है, इसके बिना वो सदा परेशानियों से घिरा रहेगा। एलिया ने इस स्त्री के लिए एक सिद्धांत निश्चित किया कि परमेश्वर कार्य करे। परमेश्वर को प्राथमिकता दे तो वो तेरे लिए कार्य करेगा। वो दूसरी, तीसरी और अन्य सभी बातों को पूरा करेगा, परंतु उसकी प्राथमिकता सीधी और मूल बात है और प्रमुख सच्चाई है, जिससे हमें अपने पूरे जीवन के अनुभव से सीखना चाहिए कि परमेश्वर से संबंध अन्य सब संबंधों से ऊपर होता है। सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर के साथ उचित संबंध में हैं, वो हर बात में आपको संभालेगा। उस विधवा स्त्री ने वैसे ही किया जैसे एलिया ने कहा था, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। अध्याय 17 पद 16 से लेकर 18 तक। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? ये अजीब बात है कि वो सोच रही थी कि उसके बेटे की मृत्यु उसी के पाप के कारण है। अध्याय 17 पद 19 से लेकर 24 तक। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है।